शुरू करें वैसे तैयार क्यों भैया रेडी सुनने के लिए थकते नहीं गए? मन तो हल्का हो रहा है, शरीर वजह थोड़ा थक जाएगा लेकिन मन अच्छा हो रहा है ना। चलिए आज हम एक और नए विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है और हमारे वक्तव्य का भी आखिरी वक्तव्य, इसके बाद जिज्ञासा समाधान चलेगा। इतिहास की ये घटना है कि वह व्यक्ति जिसने कि अपना जीवन समर्पित किया था लेकिन एक ऐसे कर्म की विचित्रता उत्पन्न हुई कि उसके लिए दंड को स्वीकार करना पड़ा और वह रथ अपनी तीव्र गति से चलता जा रहा है और घनघोर जंगल के बीच में जब वो रथ पहुंचा, रथ रोक दिया गया और उसमें उस रथ का जो संचालन करने वाला व्यक्ति था और उसका साथी थे, दोनों रथ के नीचे उतर जाते हैं और रथ के पिछले हिस्से पर बैठी हुई नारी से उस महिला से निवेदन करते हैं, हे माँ, आपको अब इस रथ को छोड़ करके यहीं पर उतरना होगा और यहीं पर आपको रुकना है। वो कहती है, मुझे यहाँ रुकना है? यहाँ आखिर है क्या? आपने तो कहा था हम आपको तीर्थ वंदना के लिए ले जा रहे हैं, ना तो यहाँ कोई तीर्थ दिख रहा है ना ही कोई जिनालय दिख रहे हैं। और वह उस सीता की बात सुनकर के इधर उस सेवक की आंखों में अश्रुधार बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगा, मैं एक राजा का सेवक हूँ और राजा का आदेश है कि सीता को घनघोर जंगल में छुड़वा दिया जाए, तो मुझे यह कर्तव्य करना है और आप इतना ही आशीर्वाद दो कि मुझे कभी जीवन में किसी की नौकरी ना करना पड़े। मैं समझ रहा हूं कि सीता निर्दोष है, लेकिन मैं एक सेवक हूं, एक नौकर चाकर हूं। मैं सत्य को समझ रहा हूं, किंतु सत्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि राजा की मुझे चाकरी नौकरी करनी है। और बस हे माँ, मुझे ऐसा आशीष दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कभी भी जिंदगी में किसी की नौकरी ना करना पड़े। समझो, यदि कोई नीतिकार ये कहते हैं कि नरक नरक क्या है, परवशता, दूसरों की पराधीनता, नौकरी, ये परवशता ही नरक है। किंतु बदलते परिवेश में आज नौकरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पहले एक जमाना था कि जब घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे और कोई आता था आपको नौकरी करना है, तो उनके पिताजी कहते थे, हमारा बेटा भले किराने की दुकान खोल करके घर में बैठेगा, किंतु किसी की नौकरी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जगह नौकरी और भीख निदान, ये कहा जाता था। नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता था। किंतु आज बदलते परिवेश में जब हमारे बेटा बेटी शिक्षा से जुड़ रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, महाराज आशीर्वाद देव, सर्विस लग जाए, जॉब मिल जाए, लेकिन विचार ये करना, यह जो भले आप उसको सर्विस कहते हैं या अंग्रेजी में जॉब कहते हैं, नहीं हिंदी में कहो तो उसको क्या कहते हैं, नौकरी। और जो नौकरी करता है वो कौन कहलाता है, यदि लड़का है तो नौकर, यदि बेटी है तो, ये बात अलग, तो बड़े कंपनी की नौकरानी है, छोटी कंपनी की नौकरानी। यदि आपको कोई नौकरानी दे के संबोधन करे तो कैसा रहेगा बताओ, अच्छा फीलिंग होगा, नहीं। फिर भी ना जाने आज कैसी होड़ चली है कि थोड़ा सा भी जिसने शिक्षण प्राप्त कर लिया वो रोजगार की बात नहीं करता, किंतु नौकरी लग गया, अभी बता के पटवारी की नौकरी की वैकेंसी निकले, 14 लाख, उसमें 9000 करीब पोस्ट है और 14 लाख बच्चों ने उसके फॉर्म भरे। अब ये बताओ, पटवारी की नौकरी आखिर है क्या? और बहनों ने भी, बहुत सी बहनों ने फॉर्म भरे, भैया लोगों ने भी भरे, और जिससे जो आए महाराज बस आशीर्वाद, नौकरी लग जाए, काय की पटवारी की। पटवारी में क्या करने पड़ता है ये तो नहीं पता, वो जाके खेत वगैरह नापो, गांव देहात में बैठो, और कितनी पेमेंट है, 17-18-20 हजार रुपए से शुरुआत होगा मिनिमम, है 15 हजार से। अब 15-20 हजार की नौकरी और कितने फॉर्म, 14 लाख, मतलब कितने में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, 100-125 में से एक बच्चे का, ये तो कह रहे 1000 चाहिए। अब ये बताओ, नौकरी की होड़ हमारे मन में लगी हुई है, हमारा आपसे विचार करना है, चर्चा ये करनी है कि आखिर नौकरी करना हमारे लिए आवश्यकता है कि मात्र हमारी मानसिकता है। हम ये सोचते हैं कि यदि हमने नौकरी कर ली, माता पिता भी सोचते हैं कि हमने यदि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दिया या लड़का हमारा नौकरी करने लग गया तो बहुत सुखी रहेगा, तो क्या जितने नौकरी करने वाले वे सब सुखी हैं क्या? नौकरी करने वाले को सारी जिंदगी पराधीनता होती है, और फिर भी क्वचित कदाचित जिस परिवार में कोई अच्छा व्यापार आदि नहीं है और उस बच्चे को नौकरी करना अनिवार्य भी हो जाए, क्योंकि घर में ना तो इतनी पूंजी है कि कोई व्यापार कर सके, अथवा ना ही कोई जितना साधन है कि हम अच्छे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो उसको फिर भी नौकरी करना आवश्यक मान ले। किंतु बेटियों के लिए क्या नौकरियां सर्विस करना अनिवार्य है क्या, ये हम विचार करें। हमारे शरीर में कितने अंग हैं? 8 अंग माने जाते हैं ना, ہاتھ کتنے ہیں آپ کے اور پیر کتنے ہیں؟ تو ہاتھ اور پیر کا کام ایک ہی ہے کہ الگ الگ ہے؟ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ سب کو جوڑ کر کے رکھنا، واسطہ دینا۔ پیر کا کام ہے کیا ہے؟ محنت کرنا، چلنا پھرنا۔ اسی پرکار پاروارک دائت کو نرواہ کرنے کے لیے دھن کی آوشیکتا ہوتی ہے، تو نشچت ہے۔ ایک گرہست آشرم کو سنچالت کرنے کے لیے دھن کی آوشیکتا ہوتی ہے، کنتو آپ یہ بتائیں، کیا دھن کمانے کی ذمہ واری پریوار میں کس کی ہے؟ پروش کی ہے کہ مہیلا کی ہے؟ مہیلا کی ذمہ واری نہیں ہے۔ بیٹیوں کی ذمہ واری دھن کمانے کی نہیں ہوا کرتی، بیٹیوں کی ذمہ واری تو یہ ہوا کرتی ہے جب سدگرست آپ بنیں گے، اور جو پروش دھن کما کر کے لاتا ہے اس دھن کا سدوپیوگ سد وترن کرنا، یہ ہمارے بیٹیوں کی واسطہ میں ذمہ واری ہوا کرتی ہے۔ کنتو آج ہم نے ایسی مانسکتا بنا لی اور ماتا پتا نے ایسی مانسکتا بنا لی کہ یدی ہم نے بیٹی کو بی ایس سی، بی کام یا سی اے انجینئرنگ آدھی پڑھا کر کے ہمیں تو اس کو نوکری کرانا ہے، اور نوکری کرانے کا پھر ہم پوچھتے کیوں کرانا ہے؟ تو ہم چاہتے ہماری بیٹی پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ آپ لوگ چاہتے نہیں چاہتے؟ صبح وہ بچے کا پرشن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، کئی ریئر تو آپ سمجھ رہے، وہ کیریئر لکھا ہے اپنے، جب چنتن کر رہے تھے تو کیریئر کا سب کا وہاں پہ کیریئر، کیریئر مانے جیون وتی، کیا ہم بیٹیوں کو کیریئر نہیں بنانا چاہیے؟ یہ اس کا پرشن ہے، اس کا سمادھان ہم آپ کو کر دیں گے، شاید یہ پرشن ابھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ پیروں سے کھڑے ہونے کا ارتھ کیا ہوتا ہے، یہ ہم بیٹیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آج آپ لوگ شکشا کو لے کر کے بہت اتساہت ہیں اور اتنے دل لگا کے پڑھ رہے ہیں کہ جب ٹاپ ٹین کی لسٹ آتی ہے تو اس میں 9 بیٹیاں ہوتی ہیں تو ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ ابھی کل یو پی ایس سی پی ایس سی کے کل جو پی ایس سی کا رزلٹ آیا، اس میں 4 ٹاپر بیٹیاں رہیں، شروع میں جو ہے 10 ٹاپ 10 میں 4-5 بیٹیاں، اور ان میں خوش قسمت 2 بیٹیاں جین ہیں، ایک ساگر کی سراف کر کے کوئی ہے نا، ایسے 2 بیٹیاں پی ایس سی کے ایگزام میں انہوں نے حل کیا۔ اور ابھی بھی ہم نے صبح آپ کو بتایا تھا یہاں پر کیریئر بنانے کی بات ہے، تو ہم کبھی کیریئر بنانے کا نشیدھ نہیں کرتے، بہت اچھا جیون ہے، لیکن کیریئر بنانے کے لیے اگر کیریکٹر سے اپنے سچ چارتر سے سمجھوتا کرنا پڑے، اور چارتر نشٹ ہو کر کے بہت اچھا کیریئر بھی بن جائے، تو سمجھ لینا آپریشن تو سفل ہو گیا کیونکہ مریض مر گیا۔ کیا تھا؟ آپریشن سکسیس ہو گیا کیونکہ مریض مر گیا، تو سفلتا مانی جائے گی کیا؟ آج ہم کیریئر کے چکر میں جس طرح اپنے کیریکٹر کو بھولتے جا رہے ہیں، جس طرح چارتر کا پتن ہوتا جا رہا ہے، اس لیے گروؤں کا کہنا ہوتا ہے کیریئر کے ساتھ ساتھ ہمارا کیریکٹر مضبوط ہو تو دنیا میں کمی گدی چلے جانا۔ آج جتنے ہمارے کہنا چاہیے ناریوں نے یا بیٹیوں نے جس طرح سے اپنے اس کے کہنا چاہیے اپنے کیریئر کو بنایا ہے، نشید نہیں ہے، لیکن آج یدی ہمارا چارترک پتن ہو جائے ایسا کیریئر ہمیں کبھی بھی سویکار نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور وچار کرنا کہ یہ ہمارے جیون میں آوشیک ہے کہ ماں ہماری ہابی ہے، کیونکہ ماں اتنی سی ہی زندگی نہیں ہے جتنی آپ کو آج دکھ رہی ہے، بھوشیہ بھی آپ کو بنانا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ دن پہلے ایک بیٹی آئی بھوپال میں، وہ ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، ایم بی بی ایس کر رہی تھی، ہم نے سہج ہی اس سے پوچھا، بیٹا بتاؤ آپ کے کالج میں کتنے اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے فرسٹ ایئر کے گروپ میں؟ اس نے بتایا 100 بچے ہیں فرسٹ ایئر گروپ میں، پرتھم ورش میں۔ کتنے بیٹی اور کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے بتایا 40 لڑکے ہیں اور 7 لڑکیاں ہیں ڈاکٹری پڑھنے والے۔ پھر ہم نے پوچھا اچھا جین اس میں کتنے ہوں گے؟ تو اس نے بتایا 8 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، ایک لڑکا جین ڈاکٹری کرنے والا، 8 بیٹیاں ڈاکٹری کر رہی ہیں۔ اب تھوڑا سا وچار کرنا، وہ 7 بیٹیاں ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن گئی جنہوں نے جین کل میں جنم لیا اس شکشا پراپت، और इधर जैन बेटा एक ही डॉक्टर बना है। अब वो बेटी ब्रह्मचर्य व्रत को लेने को सम लेंगी नहीं, वो कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। अब मान लीजिए डॉक्टर बेटी ने अगर अपना पति जब वो चुनेगी तो किराने की दुकान वाले को चुनेगी फिर डॉक्टर को चुनेंगे डॉक्टर चुनेंगे, तो एक बेटी को तो डॉक्टर मिल गया, 6-7 बेटियां क्या करेंगे बोलो। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हालात है, जहां पर अपन 60-70 बेटियां हैं वहां पर 30-40 लड़के। आज आप अपने परिवार में देख लो, चलो जिस परिवार में आप रहते हैं कितने परिवार में ऐसे आपके भाई हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस आदि में हैं, और कितने ऐसी बहनें जिनके भाई व्यापार से जुड़े हैं, कितनी बेटियां जिनके पिताजी सर्विस करते हैं, हाथ उठाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बाकी सब बेटियों के पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। अब जो बेटी अगर जॉब में चले गई, सर्विस में चले गई, अब उसके लिए कितने बच्चे हमारे जैन समाज में जो कि सर्विस करते हैं, तो अनुपात लगाएंगे तो 10% भी हमारे भाई ऐसे नहीं जो कि नौकरी पेशे से जुड़े हैं, 90% हमारे भाई लोग जो है व्यापार से जुड़ते हैं। और जब बेटियां इस प्रकार से नौकरी करना ही जीवन का लक्ष्य बना लेती हैं, फिर उनको जीवन साथी चुनने में बहुत कठिनाई होती है। और आज हमारा इतिहास बता रहा है वर्तमान कि कितनी बेटियां हमारे जैन समाज पंच परमेश्वरी को कुल को छोड़ करके अन्य जैनेतर समाज में विवाह करने को मजबूर हो रही है। उसका एक कारण भी ये भी है, और जब इधर जैन बेटियां विधि अन्यतर विवाह हो रहा है, और जब बेटे यहाँ पर जो व्यापार वर्ग से जुड़े हैं उनके लिए उम्र दराज एक उम्र बढ़ती चली जा रही है, हमको हमारी बेटियां वहाँ चली जाएंगी, इधर यहाँ पर बहुएं नहीं मिलेंगी, तो समाज की एक स्थिति अनबैलेंस होती जा रही है। कैरियर बनाने का निषेध नहीं, किंतु उतनी योग्यता हमारे पास हो, पर एक ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे पारिवारिक आवश्यकता है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले इंदौर की एक घटना हमने पेपर में पढ़ी थी, एक डॉक्टर और डॉक्टरनी थे, और दोनों बहुत अच्छे स्तर के डॉक्टर थे, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी, लेकिन जब उनका विवाह होने के बाद एक गुड़िया छोटी सी उनके बीच में आई, एक छोटी सी बेटी को जब उन्होंने जन्म दिया, और जन्म देने के बाद हमेशा ये लड़ाई होती थी आखिर बच्ची को परवरिश कौन करे। और आखिर 6 महीने की जब वो बेटी हुई और दोनों पति पत्नी में इतना संघर्ष चलता रहा, एक दिन डॉक्टरनी को गुस्सा आया और उसने उस बेटी का गला दबा करके मार डाला। सख्त घटना है, आप लोगों ने पेपर में पढ़ी होगी, 4-5 साल पहले घटना। अब उसने डॉक्टर ने जब बेटी का गला घोंट के मार दिया, डॉक्टर रात को आया, उसको ही बड़ी गुस्सा आई क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सेंसरली था और उसको ज्यादा मित्र वगैरह नहीं बनाता था, डॉक्टरनी के बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, उसकी अच्छी डॉक्टरी चलती होगी, और जो भी कुछ होगा बेटी के लेके हमेशा जब उनके बीच में तकरार होती थी। और जब ये लौट करके आया, उसने देखा मेरी बेटी को उसने मार दिया, गुस्से में आकर के उसने डॉक्टरनी का गला घोंट दिया, और उसके माता पिता दोनों वहां पर आए तो उसने भी उनको मार डाला, और बाद में स्वयं भी अपने को फांसी लगा करके जहर खा के मर गया। एक साथ एक परिवार के 5 लोग मरे, पेपर की घटना जो हमने पढ़ी। इसका मूल कारण क्या है, उन्होंने यही लिखा कि दोनों पति पत्नी सर्विस करते थे। अब दोनों जब सर्विस कर रहे, मैं रानी मैं तू रानी, कौन भरे कुएं का पानी, कौन बच्ची की परवरिश करेगा। ये छोटी सी बात संघर्ष का मूल कारण बनी और दोनों को इस तरह से जीवन समाप्त करना। एक परिवार निर्वाह के लिए अगर एक बेटा बहुत अच्छी तरीके से 10,000 रुपए महीना भी कमाता है और बेटी संस्कारवान है, तो 10,000 रुपए में भी अपना परिवार बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है। अन्यथा 50,000 में 1,00,000 रुपए महीना भी आप कमा लो, लेकिन परिवार चलाने के लिए तो हाथों की आवश्यकता होती है, मात्र पैरों से परिवार नहीं चलता। पुरुष वर्ग जहाँ पैर के समान मेहनत करता है, वहाँ हमारे जो महिला वर्ग होती है, जो बहनें बेटियाँ होती हैं, वो अपने परिवार को प्रेम और वात्सल्य देकर के उनके साथ जोड़ के रखती थी। पुरुष जितना भी धन कमा के लाता है देखिए धन का सदुपयोग करती है, दान पूजा आदि में करा करके और उस परिवार का विकास करती है। और आज आप समझ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें दीदी ने आपको बताई होगी, हम तो ज्यादा नहीं जानते, फिर भी आज ये परिस्थिति बन रही है कि 60 साल का कोई बुजुर्ग भी है तो भी बेटी को बेटी के रूप में स्वीकार करने को तैयार। एक बेटी ने ये भी प्रश्न पूछा था कि हम लड़कों की नजर से कैसे बचें, दोनों स्थितियां, नजर से हम कैसे बचें कि हम उनकी नजर में क्यों आ रहे हैं, ये भी है। आज बदलते परिवेश में जिस तरह से पहनावा परिवर्तित होता जा रहा है, एक कारण ये भी हो रहा है कि वो चीज भी एक आकर्षण का निमित्त बन रही है और हम लोग भी इसी आकर्षण में चले रहते चले जाते हैं कि कोई हमें देखे तो सही। नए नए तरीके, ये फटा पैंट देख करके हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, जीन्स जो है फटा पैंट जब पहन करके आते हैं और बच्चे पहने तो बच्चियों भी फटा जीन्स पहने, हमने क्या फटे पैंट क्यों पहने, तो ये तो फैशन है। फैशन करके क्या है, कोई हमें हमारी ओर आकर्षित हो, कुछ नयापन रहेगा तो कोई आपको देखेगा। अब हमारा ये आपसे कहना था कि अपने जीवन में दोनों भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए, आप स्वयं विचार करिएगा कि क्या हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य नौकरी करना ही होना चाहिए क्या? क्या नौकरी किए बिना एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते? क्या एक आदर्श नारी नहीं बन सकते? क्या हम समाज के निर्वाह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर सकते? हाँ, आज शिक्षा के क्षेत्र में नारियों का अग्रसर होना बहुत जरूरी है, पर जब आप शिक्षा में अच्छी तरीके से आप आगे आ जाएंगे, कभी देश काल परिस्थिति बनती है तो हम अपने बच्चों को अपने परिवार को संभाल सकें, इसलिए नारी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और यदि हमारे भीतर चारित्र इतना अच्छा हो कि हम कहीं पर भी रहकर के अपनी संकल्प शक्ति इतनी अच्छी हो कि दुनिया के किसी कोने में भी हम चले आएं, किंतु हमारे जो धार्मिक संस्कार हमें अपने माता पिता से मिले हैं, जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल की परंपरा का मच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, तो आचारित कैरियर बनाना के निषेध नहीं है, किंतु कैरेक्टर होकर के कैरियर बनाना किसी शर्त पर हमें मंजूर नहीं है। इसीलिए आपके सामने दीदियां बैठी हैं, आपने देखा ये भी अपने हिसाब से उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके, लेकिन आज उनका चारित्र देख लो, क्या ऐसा चारित्र हम स्वीकार कर सकते हैं? इतना पवित्र अगर हमारा चारित्र बने, ऐसे गुरुओं के प्रति हमारा समर्पण बन जाए, तो हम तो कहते हैं आज जैन समाज में ऐसे ऐसे बेटियां हैं जो कि उच्च पदों पर रहकर के भी, आज ऐसे बेटे भी हैं, सुना है हमने सोभी जैन कुछ कलेक्टर्स वगैरह हैं, वो पानी भी नहीं पीते बाजार का, अपनी बोतल साथ में ले जाते, सुबह हमने बहन को रात में भी नहीं खाते, आलू प्याज नहीं खाते, नॉन वेज खाने की बात तो बहुत दूर है, किंतु कई बार खेद होता है कि हमारे बेटे बेटियां शाकाहार परिवार में जन्म लिए किंतु कैरियर बनाने के चक्कर में, पर जब वो अपने चारित्रिक पतन कर लेते हैं तो बंधुओं लगता है इससे अच्छा तो है हमारे घर में ही रहकर के कम से कम कुल और धर्म की परंपरा का निर्वाह तो हो सकता है, और नौकरी करना कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। और बेटियों को तो खास करके नौकरी से ही कैरियर नहीं बनता, लेकिन हमें सदाचार के माध्यम से कैरियर बनता है, इसलिए और इस विषय में आपको ज्यादा ज्यादा जानकारी करना तो दीदी और शाम को बता दें कि कैसे सर लड़कियों को कैरियर नहीं बनाना चाहिए क्या? तो कैरियर तो बनाना चाहिए किंतु कैरेक्टर को संभालते हुए बनाना चाहिए। और हम वो प्रसंग आपको कह रहे थे कि वहाँ पर कृतांत वक्र जो था, जब सीता जी को जंगल में छोड़ के जाने लगा, उसने यही निवेदन किया था कि मुझे कभी भी किसी की नौकरी ना करना पड़े। अभी जो दीदी पृथ्वी स्थल में है, सोनल और नीलल दीदी, और भी जो उन्होंने एमसी और बीए बहुत अच्छा इंदौर में भी सर्विस वगैरह की, एक दिन हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया महाराज आज बड़ी विचित्र दशा है, और अभी जो बेटियों बेटियों के नाम एक गुरुवर का संदेश जो पुस्तिका है उसको आप पढ़िएगा, आज हम लोग वास्तविकता से अपरिचित हैं। आज आप कहते हैं आप लोग इतनी जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं कि थोड़ा सा किसी ने लिफ्ट और गिफ्ट दी कि आप लगने लगते हैं हमारा जीवन साथी हो गया, सारी जिंदगी भर ये हमें सहयोग करेगा। इसीलिए बंधुओं ये कुछ विषय आपके सामने कहा जाता है, वास्तव में हमारे लिए चारित्र बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य अपने जीवन को अच्छा आदर्श बनाना, मात्र धन कमाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पर भैया लोग जो बैठे हैं, कई भैया लोग ऐसे हैं कि उनका भी ये उद्देश्य बना है कि हमें नौकरी करना। हमारा तो कहना प्रत्येक बच्चे को, यदि उनका घर का कोई अच्छा बिजनेस है, व्यापार है, तो जो पिताजी कम व्यापार कर पाते थे, हम और अच्छी तरह से पढ़ लिख करके, जब हमारे पिता अनपढ़ से पांचवी पास थे तब उन्होंने दुकान को इतनी अच्छी बना लिया, तो हमने जब BSc और MBA और MCA कर लिया, क्या हम अपने बिजनेस को अच्छा नहीं कर सकते। 90% युवा इस बात को समझ रहे हैं कि 10 लाख का पैकेज कमाने वाला लड़का भी अगर 1 लाख रुपया साल की बचत कर ले तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों में आप जा रहे हैं, 8-8 10-10 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और कंप्यूटर में बैठे बैठे मंदिर छूट रहा है, भोजन छूट रहा है और अनेक प्रकार की परिस्थितियां वहां पर आ रही हैं, और क्या वहां पर मिल रहा है? जीवन का सुख नहीं मिल रहा। किंतु आपकी युवावस्था जो धर्म करने की थी, धर्म के साथ कर्म करते तो शायद वो कर्म आपके लिए नरक निवृत्त का कारण नहीं बनता। जिन धर्म को छोड़ करके मात्र पैसा ही हमें कमाना है, इसके बाद भी हमने ऐसा देखा है जो बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं ना, चाहे वो TCS हो, ये उसके बाद भी अपना मकान स्वयं नहीं बना पाते हैं। मम्मी पापा को उनको रहने के मकान बनाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। इसीलिए कंपनियों की नौकरी सोने के पिंजरे के समान आपको भले आकर्षित करती है, किंतु सोने का पिंजरा और अखरोट आदम का वो भोजन कर रहा हो, फिर भी तोता अगर पिंजरे में बंद है तो वो सुकून नहीं है, क्योंकि खुले आकाश में तोता भले एक जाम का टुकड़ा पेड़ पे लगी जाम को खा रहा, अखरोट बादाम का हलवा उसको नहीं मिलता, किंतु स्वतंत्रता का आनंद तो अपने आप में बहुत आनंद होता है। इसीलिए हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि नौकरी करने की मानसिकता जिन्हीं भाई बहनों की है, थोड़ा विचार करना, यदि हमारे लिए परिस्थिति आवश्यक है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आचार्य जैन कहते हैं उत्तम खेती और मध्यम व्यापार। नौकरी परिस्थिति के अनुसार अगर हम करते तो कोई बात नहीं, किंतु जहाँ तक हमें बने अपने स्वयं व्यापार आगे करके जीवन को विकसित और उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का आज कैसा रूप परिवर्तित होता जा रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आज हमारे सामने आ रही, पर आचार्य महाराज ने जब इस बात को समझा कि हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह संस्कारित थी, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया और 500 वर्ष की गुलामी का ये संस्कार रहा कि आज हम अपनी मातृभाषा का बहुमान भूल चुके हैं। यहाँ तक कि जैसे बच्चों ने जब चिट्ठी लिखी, इसमें हमारे घर से 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चे हैं जिनको इसके बाद भी अच्छी हिंदी लिखना नहीं आते, और 45 फुट लोग जरूर दे, 45 माने क्या 45 जब 45 को तब वो समझते हैं। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा का निषेध नहीं है, किंतु अंग्रेजी को जब हम शिक्षा का माध्यम बना लेते हैं तो ये पूरा हमारा दिमाग जिस तरह से विकसित होना चाहिए, किसी सोचने विचारने में हमारा उपयोग लगना चाहिए, वो सोच विचार की ओर हमारा उपयोग नहीं जाता और मात्र रटने रटने में हमारी सारी एनर्जी समाप्त हो रही है। इसलिए हमारी मातृभाषा जो हिंदी भाषा है उसका बहुमान हमें रखना चाहिए और अच्छे से अच्छी हिंदी शिक्षा को प्राप्त कर लेना चाहिए। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से पहले यहाँ प्रतिभा स्त्री में पूरी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा थी, फिर आज जब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और आज भी बच्चे इतनी अच्छी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि किसी भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे के सामने हमारी प्रतिभा स्त्री की बेटियाँ अगर खड़ी हो जाए वार्तालाप कर ले तो वो बेटियाँ कभी भी उनसे 19 नहीं किंतु 21 ही आगे होकर के वो काम करती हैं। प्रतिभा स्कूल में जिस तरह से आज बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम मदर एक्टिविटी सिखा रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी श्रेष्ठ और महान थी कि अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने देखा। कॉन्वेंट किसे कहते हैं पता है आपको? कॉन्वेंट का होता है अनाथ बच्चों के रहने का स्थान, जब विदेशों में ये परंपरा थी कि संतान को पैदा करते थे किंतु संतान को पालने का वो मन नहीं बनाते थे, स्वयं बताते अंग्रेजों में यूरोप आदि प्लूटो नाम के कोई गुरु हुए और वो चूंकि ग्रस्त तो थे, उनके चार बच्चों ने जन्म लिया और चारों बच्चों को जन्म लेते से उन्होंने फेंक दिया क्योंकि हमारे देह सुख में बाधक हैं। और जब चारों बच्चों को उन्होंने फेंक दिया तो दो बच्चों को बताते कुत्ते खा गए और दो बच्चों को अनाथ आश्रम वाले ले गए और वहाँ पर अनाथ आश्रम में जो बच्चों का पालन करते थे उन महिलाओं को नन कहा जाता है। जब यहाँ पर लाड मैकाले यहाँ पर आया और उसने देखा कि भारत में तो इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, एक हमारे पास लेख भी अगर आपको पढ़ना हो तो बता देंगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देख करके और यहाँ के युवकों में देश के प्रति ऐसा समर्पण है कि जब जनरल डायर का ने हत्याकांड किया था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना उस समय, जिसमें इसको हत्याकांड का प्रमुख था और जब एक छोटा सा बच्चा उस गड्ढे में गिर पड़ा था उसने देख लिया था इस जनरल डायर ने जो है मेरे देशवासियों को मारा, उसी समय उसने संकल्प किया था मैं इसको इसके देश में और इसके मंच से जाकर के इसका बदला लूंगा, शायद ऊधम से उसका नाम था जो भी तो है, और उसने 13 वर्ष की उम्र में ऐसा संकल्प उसने किया था और बताते वो इंग्लैंड पहुंचा, इसने पिस्तौल खरीदी और भरे मंच में जब उसका कोई कार्यक्रम चल रहा था उसने सीधे खड़े होकर उसको वहां पर शूट कर दिया। और जब भारतीय नौजवानों का खून जब उसने देखा तो उसने कहा अगर ये भारतीय नौजवानों के भीतर भारतीयता बनी रही तो हम कभी भी भारत देश में अधिकार नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें इनको भारत के प्रति इनका जो सम्मान है, भारतीय भाषा के जो सम्मान है, इसको हमें नष्ट करना होगा। और उन्होंने उधर यहाँ पर कॉन्वेंट की स्थापना की और बच्चों को अंग्रेजी बनाने के लिए एक ये घोषणा कर दी जो अंग्रेजी बच्चा पढ़ेगा उसी को उच्च पदों पर या नौकरी आदि मिलेगी, और हिंदी के स्कूल चलते थे उन स्कूलों को ग्रांट देना बंद कर दिया, नष्ट कर दिया। और धीरे धीरे ये स्थिति हम लोगों की बनी कि हम आज ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए सब कुछ किया, किंतु अंग्रेजों ने जो कुछ किया उससे कई अच्छी अच्छी तकनीक हमारे भारत में थी। अज्ञा प्रकार ये ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं ना, ये हमारे भारत में तो गांव-गांव में सर्जरी होती थी। जब कोई वास्को डिगामा या कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आया और उसकी नाक कट गई और जब वो किसी गांव से गुजरा तो गांव के व्यक्ति ने उसकी नाक की सर्जरी कर दी। पहले जब विदेशों में बुखार वगैरह आता था तो पूरा खून निकाला जाता था, नया खून डाला जाता था, और हमारे भारत में दो पुड़िया बना के बैठ दे देता इससे हमारा बुखार भाग जाता। पहले आपको ध्यान होगा डॉक्टर इतने नहीं होते थे, गांव में एक आधी दो वैद्य होते थे, पूरा गांव सुस्वस्थ रहता था। हमें ध्यान है 12-15 साल की उम्र तक कभी हम डॉक्टरों के गए नहीं, वो बाजू में दादाजी वैद्य थे वो दो पुड़िया बना करके देते थे और 3-4 दिन में बुखार ठीक हो जाता था। किंतु अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति यहाँ पर आ गई और इसके साथ साथ उद्देश्य अगर अच्छा होता तो कोई बात नहीं थी। शिक्षा और चिकित्सा ने जिस तरह से परिवर्तन किया, आज हम भारत भूमि में तो हैं किंतु भारतीयता के प्रति हमारा वो बहुमान नहीं बचा। इसलिए हमारा बच्चों से यही कहना है, पहली बात तो जीवन में नौकरी की अनिवार्यता ना समझें। आप वणिक माने जाते हैं, व्यापारिक वर्ग माने जाते हैं, जो व्यापार सरकार भी इसमें प्रधानमंत्री स्किल को योजना चले ना, प्रधानमंत्री को कौशल विकास योजना भी, हम मंडा में गए थे वहाँ सैकड़ों बेटियाँ उस कौशल विकास योजना में जाकर के, और हमें ध्यान है जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे 90% हमारी बहनें 8 सब्जेक्ट लेती थी, 8 माने कला। अब जिससे भी पूछो है मैथ कॉमर्स वायो और CA MBA MCA ये सब व्यापारिक स्तर की पढ़ाई है। वास्तव में 8 जब कला सीखते थे कि कला सीखने वाली बहनें जो होता हुआ करती थी घर में रहकर कितना अर्जन कर सकती हैं कि उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप लोग देख लो ड्रॉप वगैरह जो बनते ना फ्लावर वगैरह, ये बिना कम खर्चे के इसमें बहुत अच्छी कमाई हो सकती थी। पहले घर में हमने देखा बहनें स्वेटर वगैरह बुनती थी और बहुत सारी ऐसी कला सीखती थी, कि उनको अपना चारित्र भी सुरक्षित रहता था और इसके साथ साथ धन का अर्जन भी। इसलिए जितनी ये टेक्निकल तकनीकी पढ़ाई है, आप अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी भैया बहन को भी हमने देखा जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर के हैं, सीएस ब्रांच से जिन्होंने बीई की है, लेकिन 8,000 और 10,000 रुपए महीने में भोपाल और इंदौर में नौकरी कर रहे हैं। हम बताओ 8-10 हजार रुपए में क्या होता। लेकिन एक शिक्षा का क्षेत्र भी इतना अच्छा है, यदि हमारी बहने विथ च्वाइस, वाई चांस नहीं वाई च्वाइस, इच्छा पूर्वक यदि शिक्षा को क्षेत्र को चयन करें, एक संस्कारित बेटी अपने जीवन में हजारों बेटियों को संस्कारवान बना सकती है, लेकिन एक बेटी जो नौकरी कर लेगी अपना पेट तो पाल लेगी, किंतु के संस्कार को आगे प्रवाहमान नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ जो बेटियाँ बैठी हैं उनसे हमारा इतना ही कहना है, यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दें, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कोचिंग क्लासेस वगैरह में एक बहुत अच्छा ऐसा आजकल जो चल रहा है कि बच्चे भी इसका लाभ लेते हैं, उसमें भी आप अच्छा बना सकते हैं। तो ये है शिक्षा का उद्देश्य, पहले नौकरी करना होना नहीं चाहिए। जितने भैया बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि वो अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं करो, शिक्षा का निषेध नहीं, किंतु नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है। यदि आपके घर में अच्छा व्यापार होता है उस व्यापार को अपन चुने, और यदि वो कुछ नहीं है तो नौकरी भी करना ये काम का बुरा नहीं है, किंतु हमारा चारित्र हमेशा उज्जवल बना रहे, हम जहाँ पर भी रहे देश सास गुरु को ना भूलें, तो हमारा यह व्यापार नौकरी करना भी सर्वथा अनुचित नहीं है। किंतु बेटियों के लिए आवश्यक हो तो जरूर करें, लेकिन यदि हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है और सदग्रस्त बनकर के भी हम अपना बहुत अच्छा धर्म ज्ञान कर सकते हैं, तो नौकरी करना एक प्रकार से आ बैल मुझे मार के समान ही ये घटना हो रही है। आज जितनी बहने पूना बैनवे बंगलोर वगैरह में है, तो उनके जब आप प्रश्न सुनेंगे, बेटी ने हमसे पूछा था महाराज हम तो सर्विस करते हैं, अपने लिए नहीं पूछा दूसरे ने कि महाराज हम लोग सर्विस करते हैं, और विवाह करना एक प्रकार का बंधन ही है। विवाह करना क्या है? बंधन ही है। हम क्यों बंधन में बने? हम भी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और एक बॉय से वो भी 50,000 रुपये कमाते हैं, पर हम शादी विवाह करके दूसरे में बंधने से अच्छा है लिव इन रिलेशनशिप को हम स्वीकार कर लें। लेकिन जानते हैं आप लोग, आज की परंपरा चल रही है कि बिना विवाह किए लड़के लड़के मित्र बनते हैं, और वो अपने जीवन साथी के सम्मान करके ऐसे कई वर्षों तक वो साथ में रहते हैं, जिसे शासन ने भी कुछ छूट दे दी है। लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक परंपरा के अनुसार सन्मार्ग ही उन्मार्ग है। उसका ये कहना था महाराज, यदि हम इतना नियम ले लें कि एक ही के साथ हम जीवन भर रहेंगे लेकिन शादी नहीं कराएंगे, लिविन में रहेंगे, क्या आप हमें आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? हैदराबाद में बेटी जॉब करती थी, अब हमने कहा देखो बेटा विवाह करने के बाद हम संबंध करते हैं वो बुरा नहीं है, किंतु विवाह किए बिना अगर कोई ऐसा करके उन्मार्ग माना जाता है, कभी भी सन्मार्ग नहीं हो सकता। आज ऐसे केस बड़े बड़े शहरों में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बंधना नहीं चाहता, और वो बंधन के बिना कभी भी मुक्ति भी नहीं। पतंग जब तक दूर से बनी है तब तक पतंग का अस्तित्व रहता है, लेकिन दूर से अगर टूट गई तो पतंग कुछ ही देर में अपने जीवन को नष्ट कर लेती है। इसीलिए नौकरी की आवश्यकता और परिस्थितियाँ आदि देख करके, और अपने आप में अगर आप इतने मजबूत हैं कि हम अपने चारित्र का निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, तो बंधुओं इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सोच विचार कर लें, मां पटवारी का फॉर्म भर दिया और बड़े खुश हो गए महाराज आधे ज्यादा बच्चे यही आज पटवारी बन जाए आशीर्वाद दो, हमें समझ में नहीं आ रहा वहाँ वो देहात में बाई चांस बन गई खुदा ना का आसपास, तो वो दाऊ बोतल लगाया गया ये बनना अच्छे से ना ये भेद हम बेचारी बेटे वो खावे पिए वाले कोई मंदम नहीं, वो करोगी क्या वहाँ जाके? लेकिन कोई विचार नहीं कर रहा। अभी हम ये भोपाल में एक ऋषभ जैन भैया सीए हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, जब हमने उनसे पूछा आपके यहाँ कुछ बेटियाँ सीए हैं क्या, बोले हाँ कुछ दो तीन बेटियाँ जिन्होंने सीए की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन आज हम उनको अपने ऑफिस में मास काम देते हैं 15 से 20 हजार रुपए महीना मास उनको देते हैं, और आपको कितना मिलता? बोले हम लोग तो साइट में जाते हैं, 7-7 दिन बाहर रहते हैं, वो जो अकाउंटिंग वगैरह करते हैं तो उतना पैसा देती, ये लोग भी बाहर घूमे, बाहर जाए 7-7 दिन घर के बाहर रहे तो इनको भी पैसा मिलेगा। लेकिन हम बताओ यदि आप सीईओ बन गए और बाहर जाके आपको यदि 50-60-70 हजार रुपये मिल भी जाए तो क्या उचित रहेगा? आज जिस तरह से हमारे संस्कारों की सुरक्षा सामूहिक परिवार में है, क्या वैसे इन संस्कारों की सुरक्षा रहना संभव है क्या नहीं, इस पर विचार करिएगा। तो ये बात आपको बता दें कि नौकरी की अनिवार्यता पर विचार करें, शिक्षा ऐसी होना चाहिए, अभी यहाँ पर हमने एक दिन चर्चा की, पहले भी चर्चा की थी, आज शिक्षा का विकृत रूप क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला कारण है स्कूल का टाइम, जो 8:30 या 7:30 बजे से स्कूल लग जाता है और 2-2.5 बजे स्कूल छोड़ते हैं, तो हमारे जिसने जैन कुल में जन्म लिया वो बेटा ना तो अच्छी तरह से देव दर्शन पूजन कर पाता है, और 2:30 बजे जो बच्चा आके पहली बार भोजन करेगा 3 बजे, तो रात में भोजन करना अनिवार्य हो जाता है। और पाठशाला की बात कहो तो महाराज ट्यूशन है, कौन सी लड़का कौन सी क्लास पढ़ता है, पढ़ता तो फर्स्ट में है, पहली क्लास का बच्चा, पर मम्मी भी ऐसी हो रही है कि उसको ट्यूशन तो भेज रही है किंतु पाठशाला भेजने का उनका मन। लेकिन ध्यान रखना, जो जो बेटा बेटी पाठशाला से जुड़ रहे हैं और पाठशाला में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कितना अच्छा बनता है, और लौकिक क्षेत्र में भी जो आप 5 बार पढ़ने पर आपको अभी जो बच्चे ने प्रश्न लिया हमें याद नहीं होता, हम उनको गारंटेड एक दवाई देते हैं, यदि आपके मोहल्ले में नगर में पाठशाला चलती हो प्रतिदिन आप पाठशाला जाना शुरू कर दो, पर अगले को आपका ऐसे बन के आता ना कोई ऐसे बन, क्या कहते हैं परीक्षा आने वाली शिष्य मंत्री हो गई क्या नहीं, हाँ दिसंबर वाली हो गई, आगे कोई फ्री, आप देख लेना अपने आप आपका क्षयोत्तम बढ़ेगा और आपको जो विषय जल्दी भूल रहे हैं वो विषय स्मरण में रहने लगेगा। हमने तो इसको 50 प्रैक्टिकल करके देख लिए, जो बच्चे पाठशाला से जुड़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनके बुद्धि का क्षयोत्तम बढ़ता है। इसीलिए जितने भैया बहन यहाँ बैठे अभी भैया लोगों के लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि भैया लोगों को संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और आचार्य ने भी एक बार कहा था कि जो 12 वर्ष से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको बहने ना पढ़ाएं, क्योंकि पाठशाला में बहने ही ज्यादातर पढ़ाने वाली है, इसलिए 8वीं तक के बच्चों के लिए और स्कूल कॉलेज पढ़ने वाली बेटियों के लिए पाठशाला खुली है। जितनी बहने अगर यहाँ पर बैठी अगर आपके मोहल्ले में कहीं पाठशाला चलती हो जरूर 1 घंटे का समय आप पाठशाला में दे दो, हमारा विश्वास है। और जो बड़े भैया यदि हमने कहा था आप लोग 8वीं क्लास से ऊपर पढ़ रहे हैं अभिषेक पूजन करना स्वाध्याय करना शुरू कर दें, यहाँ पर पुरुष वर्ग का स्वाध्याय भी शुरू हुआ है, यदि आप एक वाणी जिनवाणी के अध्ययन से संस्कारों से जुड़ करके तो देखिए जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी आपको, नया आत्मविश्वास मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें कई गुना आपको शीघ्रता से सफलता मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आप लोग जो आज पाठशाला से नहीं जुड़े हैं, यदि अभी गुना में पाठशाला चलती है आप देखेंगे वहाँ पर MSc BSc करने वाली सारी पार्श्व बहने पाठशाला जाती है, कोई गुना कभी कोई गए हो आप लोग यहाँ परिचित हो, वहाँ जो चौधरी मंदिर आगे पाठशाला जाती है 200-200 बच्चे प्रतिदिन पाठशाला आते हैं और बिल्कुल स्कूल जैसा पाठशाला वहाँ पर चलती है। जब हम वहाँ पर इतनी बार गए और कोई भी महाराज जी माता जी आ जाए किंतु कभी भी उनकी पाठशाला बंद नहीं होती, और सुधा सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ तो सुधा सागर महाराज जी वैसे किसी की बड़ाई करते नहीं, उन्होंने कहा मैंने आज तक गुना की सारी संस्थाएं देख ली किंतु पाठशाला एक ऐसी संस्था मुझे लगी वास्तव में जो सबसे अच्छी तरीके से अपना कार्य कर रही है। आज आप लोग यदि पाठशाला से जुड़ते हैं जिसने ताली बजाया हम समझ गए वो आज से पाठशाला पक्का आएगा कल से, जो बच्चियाँ पाठशाला भैया लोग पाठशाला कल छोटे बच्चों का कार्यक्रम है उसमें हम छोटे बच्चों को तैयार कर ही देंगे, बड़े बच्चे यदि पढ़ना चाहते हैं 8वीं क्लास से ऊपर के बड़े बच्चे उनकी व्यवस्था हम बनाएंगे, पढ़ाने वाले हैं किंतु आप पढ़ने का मन ही नहीं बना पाते और पाठशाला में जा करके मौज मस्ती करें, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और यदि यहाँ पर जितनी बहने बैठे हैं आज एक मन बना लो कि आपका जिस कहना चाहिए लौकिक जीवन आप अच्छा बनाना चाहते हैं, किंतु पाठशाला से जुड़ करके देख लो, साल 6 महीने में आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। आप कॉलेज भी पढ़ रहे हैं तो देख लो, जितने नंबर की आप अपेक्षा करें उससे और अच्छे नंबर आपके आएंगे। लेकिन बस 1 घंटे कम से कम हम इस जिनवाणी के स्वाध्याय से पाठशाला से जुड़ के तो देखें। यहाँ पर संकल्प पत्र वगैरह भी हैं, अभी वो दीदियों से हम मिलकर लें, और बहनों की अलग अलग क्लास की व्यवस्थाएं कर दी हैं। अभी यहाँ पर पहले कहाँ, जब हम लोग 2002 में जब यहाँ पाठशाला खुली थी 600 बच्चे थे, और अभी पाठशाला में 60-70 या 80 बच्चे हैं। बाकी बच्चे कहाँ चले गए, महाराज बच्चे वाले हो गए। जो 2002 में बच्चे थे अब वो बच्चे वाले हो गए, अंतर तो आ गया, लेकिन उनके भी बच्चे हैं, अब वो भी पाठशाला आ सकते हैं। आप लोग जरूर मन बनाएगा, तो निश्चित हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति, जो बच्चा पाठशाला से जुड़ेगा वो कभी भी पतन की ओर नहीं जाएगा। अब ये 2-3 प्रश्न और थे इसका। मेरा प्रश्न यह है कि जब से मैं 8 साल की थी तब से बिना मंदिर के पानी भी नहीं पीती। बहुत अच्छा करते हैं आप, तो क्या ये सही है? नहीं है सही, नहीं तो ऐसा क्यों करते? सही तो है कि मुझे मंदिर जाने से पहले जल ग्रहण करना चाहिए या नहीं? देखो ऐसा है, आपकी संकल्प शक्ति कितनी है इस पर विचार करना चाहिए। यदि आपने संकल्प लिया है कि हम रात में पानी आदि नहीं पिएंगे, अब क्या होता है कई बार हम लोग देखा सीखी भी नियम ले लेते हैं, लेकिन बाद में भी आपको और आतुरता होने लगे, इसलिए माता पिता कहते हैं बेटा पी लो। पानी पीना और नहीं पीना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यदि आपको पानी नहीं मिल रहा है तो कोई आतुरता तो नहीं हो रही, संकलित परिणाम तो नहीं हुए, और व्रतों के प्रति हमारी अनास्था तो नहीं हो रही। यदि श्रद्धा पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक आप व्रतों का पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पुण्य का संचय कर रहे हैं, किंतु यदि आपने संकल्प नहीं लिया है तो देवताओं गुरु के साथ संपर्क संकल्प कर लेंगे तो आपकी और दृढ़ता बन जाएगी। मूक माटी में एक जगह लिखा है आचार्य ने, अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। जब तक हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प नहीं होता तब तक विकल्प होते हैं। जैसे मान लीजिए अब 10वीं क्लास में आपने परीक्षा पास कर ली, अब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कोई कहता मैथ्स ले लो, मम्मी कहती है मैथ्स ले लो, पापा कहते हैं बायो ले लो, मन महाराज जी कहते हैं आर्ट्स ले लो, और सहेली कहती है कॉमर्स ले लो, अब कौन सा लेने बताओ। संकल्प विकल्प अब तक चलते हैं जब तक आपने सब्जेक्ट चूज नहीं किया, पर जैसे आपने मन बना लिया कि महाराज जी ने प्रोचन में कहा था सबसे अच्छा सब्जेक्ट बेटी विद आर्ट, और जितने IAS UPSC PSC की जो उच्च आधिकारिक वर्ग की जो परीक्षा होती है उसमें आर्ट सब्जेक्ट वाले बहुत सफल होते हैं, सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान उनका इतना अच्छा होता है। अभी एक हमें जज मिले थे, क्या आदेश जैन करके कोई जज है ना, आदेश जैन करके टीकमगढ़ के, वो अभी हमें बुरहानपुर में मिले थे, उन्होंने बताया मेरे परिवार वाले कह रहे थे कि मैथ्स लेना है, मैंने कहा नहीं मैं तो आर्ट्स लूंगा, और आर्ट्स के साथ उन्होंने BA किया, LLB की, और आज जब उन्होंने LLB परीक्षा जज की परीक्षा दी, आज वो जज बन करके और आचरण के साथ किस अच्छे तरीके से उनका जीवन चल रहा है। आज हम लोग सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा समझते हैं, आर्ट्स। अरे आर्ट्स में क्या रखा, लेकिन आर्ट्स में बहुत कुछ रखा है। आचार्य से भी आज कल कह रहे हैं कि बेटियों को आर्ट्स लेना चाहिए, कला सीखना चाहिए। ऐसी अभी आप ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बनते ना, एक एग्जीबिशन में हमने एक जगह 3 लाख रुपए की पेंटिंग, इतनी सी पेंटिंग थी, 4 देहात की महिलाएं थी, बैलगाड़ी में जा रही थी, और उनका श्रृंगार करी हुई महिलाएं थी, जब वहां पहुंचे वो पेंटिंग को देखा बोले महाराज ये 3 लाख रुपए में खरीद के लाए, और पेपरों में आता 80-80 लाख रुपए तक में पेंटिंग बिकती है। यदि आपके पास कला हो क्यों ना ऐसी कला आप करें, ड्राइंग करें और आर्ट बढ़े, ये आजकल घंटे वो बता सकते हैं। यहाँ पर वो दीदी वगैरह जो करते हैं उससे आप संपर्क करेंगे, इतना ज्यादा कला हम सीख सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस आदि में जो हम जाते हैं इससे उतना लाभ नहीं होता, और हमें अब इस समय आप बड़े कन्फ्यूज में हैं कि मैं क्या करूं, आठ लोगों की का महाराज जी की मानोगी, मम्मी की मानोगी, पापा की मानोगी कि अपने मन की मानो। लेकिन ये संकल्प विकल्प कब तक चलते हैं, जब तक आप दृढ़ संकल्प, किसी ने आचार्य से पूछा आचार्य जी हमारा जाप देने में मन ही नहीं लगता, सुन रहे हैं सुनो, हमारे कई बच्चों हमारा जाप लेके जाप देने में मन नहीं लगता, पूजन में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आचार्य जी ने एक जवाब दिया था कि संकल्प लेकर के आप बैठो, मैं एक घंटे में 5 माला फेर करके ही उठूंगा, तो देखना मन बहुत अच्छा रहेगा। आप जब पढ़ने बैठे, हमने कल बताया था, जैसे आप पढ़ने के टेबल पे जाएं, एक घंटे संकल्प लेके बैठे कि मैं एक घंटे अब यहाँ से हिलूंगा नहीं और एक घंटे तक मैं किसी से बोलूंगा नहीं, करके देखना प्रैक्टिकल, आपका मन इतना अच्छा रहेगा। आचार्य ने स्वयं कहा, संकल्प शक्ति के साथ हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब संकल्प नहीं है हमारे मन में, सुन रहे सब लोग, काय का संकल्प है आपका, ये घंटे जो महाराज जी सुना रहे हैं उसको हम ध्यान से सुनेंगे। संकल्प शक्ति के साथ हमारी शक्तियों का विकास होता है, मन की एकाग्रता का विकास होता है। कल हमसे एक भैया पूछ रहे थे, महाराज जी आप बताओ आपको ठंड नहीं लगती? अच्छा भाई, हमें भैया लगती तो है, कैसे सहन कर लेते आप? हमने कहा यही तो संकल्प शक्ति है, हमारी संकल्प शक्ति है कि अब आप लोग भी इसको ठंड लगती, हमें भी ठंड लगती है, किंतु हम उस ठंड को सहन कर लेते, हमारी संकल्प शक्ति है। जब आप परीक्षा के हॉल में बैठते हैं, आपका संकल्प है कि मैं एक घंटे के बाहर इस परीक्षा रूम से बाहर नहीं जा सकता, प्यास लगे तो भी आप सहन करते हैं, गर्मी लग रही हो, गर्मियों में कितने बजे पेपर होते? 2 बजे से, पर ठंड में कितने बजे से पेपर हो रहा है? 8 बजे से। बहन जी बता रहे थे अजीब गरीब कॉलेज वाले, ठंड में तो 8 बजे से पेपर लगते, अब जब बताओ, सही बता रहा, सुन रहे हमारी बात, जब परीक्षा देने बैठ जाओ ठंडी हवा चले तो लगती क्या? ऐसे हम जब मंच में बैठ जाते ना प्रवचन के, तो हमको भी ठंड नहीं लगती, पर आकर जब हम प्रवचन करने लगते जवाब देने लगते तो ठंड भी हमें, ये उपयोग की दृढ़ता और परिस्थिति का अंतर है। इसलिए हमारा आपको ये कहना है, एक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी क्रिया बनाएंगे तो आपको यह सब अच्छा होता चला जाएगा। कितने बजे तक का समय अपने पास? 4:30 तक का है ना, 4:30 से ना भूल गए हैं, ये प्रश्न था। तो मंदिर जाने के पहले जल ग्रहण करना चाहिए, यदि आपका संकल्प नहीं है तो कर लेना चाहिए, यदि संकल्प है तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, और अपने व्रतों में कभी भी दोष ना लगे ऐसा मन बनाना चाहिए। भैया जी सुनो, आप लोगों का प्रश्न, नमोस्तु महाराज जी, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, महाराज श्री मैं किसी उत्तर को याद करता हूँ तो उसे मैं 3 से 4 दिन में भूल जाता हूँ, तो महाराज जी उत्तरों को याद करके भूले ना ऐसा कुछ तरीका बता दो। आप पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, हमारे पास अलग के आज उसे दीनी ने इस विषय में आपको बताया होगा और बता भी रहे हैं, और इस विषय में हमने ही बहुत सारी आप बात बता दी। देखो जब हम पढ़ते एक मतलब पूरा पेज है, पूरे पेज को आप लोग रटो मत, उसके 2-3 बिंदु बना लो, पॉइंट बना लो, और उस पॉइंट से अगर आप बना लिया तो पूरा फोकस उसके हो जाए, उसके साथ साथ क्या क्यों कैसे किसके लिए, ये 3-4 प्रश्न आप उठा लेंगे तो वो विषय आपके दिमाग में बैठेगा। जैसे मान लीजिए एक वाक्य अपन बनाए, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ और वहाँ मुझे गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, क्या कहा? मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, वहाँ मुझे गुरुजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब इस बात को याद करना है तो पूरी इस पंक्ति का फोकस एक शब्द पे आप करो, कौन सा शब्द उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? गुरुजी पढ़ाते हैं। कहाँ पर पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? मुझे पर। मैं कहाँ जाता हूँ? मैं विद्यालय जाता हूँ गुरु पढ़ने के लिए, विद्यालय गुरु जी वहाँ मुझे पढ़ाते हैं। तो एक शब्द को पहले हम लोग जैसे प्रवचन करते हैं, कभी आपने सुधा सागर महाराज जी का प्रवचन सुना और महाराज जी का प्रवचन सुना, अब एक एक 2-2 घंटा प्रवचन होता है, डीडी वगैरह का लेक्चर जैसे आप सुन रहे हैं, क्या कुछ लिख करके ले जाते क्या? फिर इतनी चीजें कैसे याद रहते? कुछ बिंदु हम ऐसे बना लेते हैं कि इस विषय पर एक बिंदु हमने लिया और उस बिंदु पर हम व्याख्यान करते चले, एक से परत पूर्ति चली जाती है। आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल लाइन टू लाइन बैठते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे मित्र था, वो गणित रट के जाता था, मैथ को भी हल नहीं करता था, वो रट के जाता था। हम उससे पूछते थे कैसे, हमको बता दो, बोले ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो लिख करके आ गया। आज 90% बच्चों की दशा है कि परीक्षा रूम से बाहर निकलने के बाद आप उनको पूछ लो तो उनको कुछ भी याद। ये मात रटंत विद्या जो हम लगा रहे हैं इसका परिणाम निकलता है। आपको याद करने का पहला तरीका बहुत अच्छा हमने बता दिया, प्रतिदिन पाठ पढ़ाना शुरू करो अथवा भक्तांबर पाठ करो, जिनवाणी स्तुति करो। और दूसरा विषय हमने आपको बताया कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, मोबाइल को बंद कर दो, एक घंटे मौन रखो, इस तरीके से आप उसका दें। अगला प्रश्न ये है, जो जीवन में रहते हैं उनकी ज्यादा खुली और जो फॉरेनर लिखा हुआ, जो फॉरेनर रहते हैं उनको ज्यादा पुण्य का उदय रहता है कि जो फॉरेनर कंट्री में उनका जन्म हुआ उनका ज्यादा पुण्य, कि हम इंडिया में नहीं भारत में, कहाँ जन्म हुआ आपका? ये वो भारत भूमि है जहाँ पर कि महापुरुष ने जन्म लिया। इंडिया तो अंग्रेजों के आने के बाद बना, पर वो भी उन्होंने ईस्ट ऑफ इंडिया नाम की कंपनी की स्थापना की थी। वास्तव में हमारा भारत कैसा है हमें तो पूरी याद नहीं है, फिर भी आपको सुना देते, कुछ बीच में भूल जाए तो कोई बात नहीं। एक बार एक अमेरिकन हिंदुस्तान आया और जब हिंदुस्तान में आया तो उसने हमें हिंदुस्तानी से पूछा कि यहाँ पर जिस गली में मैं जाता हूँ वहाँ पर हर छोटा छोटा बच्चा एक ही नारा लगाता है, मेरा भारत महान। आखिर तुम्हारे भारत में ऐसी क्या विस्तार हुई जो कि तुम हर बच्चा मेरा भारत महान कहता है? तो उसने कहा, अरे सुन अमेरिकन, भारत की पहली वाटर प्रूफ लेडी तो इंडिया में, फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, उसका नाम था होलिका, वो कभी अग्नि में जलती नहीं थी। वो तो उसने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र किया था, इसलिए भगवान ने उसकी बॉडी में शॉर्ट सर्किट किया था। भारत के विश्व के पहले पत्रकार हुए नारद जी, वो इतने खतरनाक थे, किसी भी सत्ता और व्यवस्था से डरते नहीं थे और पूरी सनसनी खेल रिपोर्टिंग करते थे। भारत के पहले विश्व के पहले कॉमेंटेटर हुए संजय, जिन्होंने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो आंखों देखा हाल अंधे दशरथ को यहाँ बैठे बैठे सुनाया। और भारत में पहली वाटर प्रूफ बिल्डिंग जो थी ना विश्व की, वो भी भारत में बनी थी, वो विष्णु भगवान का सरकारी रेसिडेंस थी जो कि समुद्र के फैलने में आज भी स्थित है। ये सब बातें सुनकर अमेरिका हड़बड़ाया, बोले फालतू की बातें नहीं बताओ, फालतू की बातें नहीं बताओ, कोई ठीक ठाक ढंग का आविष्कार तुम्हारे भारत ने किया हो तो बताओ, बनता हमारा दिमाग मत खाओ। तो उसने पूछा, अरे अमेरिकन बता कैसा आविष्कार? बोले देखो, हमने अपने अमेरिका में बल व्यक्ति की न्यूरो सर्जरी कर दी, मस्तिष्क का ऑपरेशन कर लिया, किडनी बदल दी और बाईपास सर्जरी कर दी, ऐसा कोई मेडिकल साइंस में आविष्कार किया हो तो बताओ, वरना हमारा दिमाग मत खाओ। तो हिंदुस्तान ने सुन रहे अमेरिकन, सुन रहे अमेरिकन, विश्व को सर्जरी का कॉन्सेप्ट तो हिंदुस्तानी ने दिया था, वरना बता गणेश जी का ऑपरेशन तेरे बाप ने किया था। सबसे अमेरिकन को नहीं, सारे विश्व को ज्ञात है कि दुनिया में चाहे जितने देश हो जाए उन सब देशों में मेरा भारत महान। सारी की सारी विद्या का उद्गम स्थल तो हमारा भारत ही नहीं है, लेकिन हमने इसलिए जितने बच्चे यहाँ बैठे, एक नियम ले लो, आज से हम कभी भी इंडिया नहीं बोलेंगे, आचार्य जी कहते इंडिया नहीं भारत बोलो, क्या बोलोगे आज से? हम भारतवासी के इंडियन है, इंडियन माने इडियट हो जाओगे तुम, इसलिए हम भारत हैं, हम भारतवासी हैं। युग के आदि में ऋषभ नाथ भगवान के जो प्रथम पुत्र थे भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, और हमें गौरव होना कि भारत भूमि में हमने जन्म लिया, जहाँ राम महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया और पूरा विश्व भारत को अध्यात्म गुरु के रूप में स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म भी यहीं पर जन्म हुआ, लेकिन जब बौद्ध धर्म यहाँ नहीं रुक पाया तो बिजनेस में भरे चला गया, लेकिन भारत तो वो महान देश है जिसके लिए तो देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। इसीलिए इंडिया नहीं भारत बोलो, क्या बोलोगे? हम कौन से वासी हैं? भारतवासी, इंडिया नहीं है। भारत और इंडिया का मैच नहीं कराना, भारत और पाकिस्तान का तो भेजे ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का है, इंडिया और भारत को क्या कहते हैं, माता कहते हैं, भारत माता कहते ना, और कोई देश को माता कहते हैं, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता, ऑस्ट्रेलिया माता, किसी को माता क्यों नहीं कहते, भारत को माता क्यों कहते, बताओ कभी सोचा आपने? सोचना, भारत ही एक ऐसी भूमि है जिसमें तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया, कोई देश के आगे मां नहीं लगाया जाता, किंतु भारत को माता कहा जाता है। और ये माता इसलिए है क्योंकि हमारी पुण्य भूमि है, यहाँ के तीर्थ असंख्यात तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। कितने तीर्थंकर? 24 की संख्या। ये 24 इस साल के, इसके पहले भी कई 24 ही हो सके और वो सब तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया। हाँ, हम इंडिया लोग नहीं, भारतीय लोगों के ज्यादा पुण्यदय है जो भारत देश में जन्म लिया। मतलब किस तरह से भगवान जी डिसाइड करते हैं कि हमको इंडिया में पैदा होना कि इंग्लैंड में पैदा होना। भगवान कोई डिस्कनो, भगवान कोई हमारा मुनीम नहीं है जो कि आपके बैठ के डिसाइड करते रहे, कोई सीए नहीं है भगवान आपका। भगवान हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं करते। सुनो, हमको किसने बनाया, पर्वत को किसने बनाया, दुनिया को किसने बनाया, किसी भगवान ने बनाया नहीं। ये दुनिया तो ऑटोमेटिक है। और यदि आप कहोगे कि भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ये भी तो प्रश्न उठेगा ना। यदि दुनिया को भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। जब भगवान बिना बने रह सकता तो दुनिया भी बिना बने रह सकती है। तो दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, यदि कोई बनाने वाला हो तो फिर केस हो जाएगा। ओ माई गॉड, एक ओएमजी फिल्म आई थी ना, उसमें भगवान को उसने कोर्ट केस दायर किया, कांजी भाई ने क्यों कर दिया था कि मेरी बिल्डिंग तुमने गिराई, क्योंकि उन्होंने आदम में लिखा कि भगवान बनाता और भगवान दुनिया को, जब तुमने दुनिया नष्ट कर दी तो तुम्ही ने मेरी बिल्डिंग गिराई, इसलिए मुझे हर जाना। देखा होगा आप लोगों ने, वास्तव में भगवान कुछ नहीं करता। उस फिल्म में कहीं जैन दर्शन की बात नहीं गई, क्योंकि जैन दर्शन हमेशा ये मानता है कि भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता। भगवान तो दर्पण के सामने समान है। आप लोग मंदिर जाते हैं ना सब लोग, और भगवान के सामने ऐसे क्या करने जाते हैं? भगवान कोई आपका भला बुरा करता क्या? नहीं। फिर भगवान तो आईने के समान है, दर्पण के समान। दर्पण जानते हैं आप लोग, आईना कहते हैं ना, आईना। जब घर से मंदिर आ रहे तो क्या देख के आए आप, सामने देखो ना। अब मान लीजिए आपके चेहरे पर कोई दाग लगा हो या पाउडर अव्यवस्थित हो गया हो। यदि कोई दाग लगा तो साफ कौन करेगा, आईना करेगा कि आप करेंगे? साफ अपने करना पड़ेगा। भगवान दर्पण के समान है, हमारे भले बुरे को दिखा सकते हैं, किंतु सुधारना तो हमें ही पड़ता है। भगवान कभी भी हमें इंडिया, भारत में अथवा पाकिस्तान अथवा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पैदा नहीं करता। हम जैसा कर्म करते हैं, यदि हमने पूर्व में बहुत अच्छा पुण्य किया होगा तो हमें भारत भूमि मिलती है। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कोई पाना, बारह भावना में आता ना, जहाँ पर मोक्ष आदि प्राप्त किया जाता है, ऐसे देश में जन्म लेना बहुत पुण्य का उदय है। भगवान ने डिसाइड नहीं किया, हमने इतना पुण्य किया था कि हमको भारत भूमि मिली। भारत भूमि नहीं, भारत में मध्य प्रदेश मिला, मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में विदिशा जिला मिला, और आप लोगों को विदिशा जिला में गंज वासुदा मिला, इसलिए बहुत पुण्यशाली आप हैं। जहाँ छह सात सात मंदिर है, महाराज माता जी आते रहते, चातुर्मास रहता रहता है, और इतना बड़ा महावीर भगवान मिल गया, जहाँ मिल बैठे आप एक साथ प्रवचन, ऐसा स्थान भी कहाँ मिलता। कई जगह हम लोग ढूंढते हैं कितने बैठे। ये सब आप लोगों का पूर्व में किया पुण्य है, लेकिन पुण्य का सदुपयोग करोगे तो बहुत अच्छे बन जाओगे। रावण का भी बहुत पुण्य था, सोने की लंका मिली थी, लेकिन रावण ने जो पाप किया, वो सोने की लंका मिली थी, शांतिनाथ भगवान का मंदिर मिला था, लेकिन वो अपने आप को पतन से नहीं बचा पाया। हमें ये सब कुछ पुण्य की वजह से मिला है। अब हमें ऐसा पुरुषार्थ करना होगा कि अगला जन्म में हमें और इससे अच्छा विदेश क्षेत्र मिले, जहाँ आज ही तीर्थंकर भगवान है। विदेश क्षेत्र में ये भरत आज ही तीर्थंकर भगवान है। धर्म समूह लगता है, हम जाके प्रवचन सुनते हैं, हमारा इतना सौभाग्य तो है कि हमें जिन मंदिर मिल रहे हैं, गुरु मिल रहे हैं, लेकिन आज साक्षात तीर्थंकर हमें नहीं मिले। और इतना अच्छा पुण्य करो कि अगले भाव में हमें ऐसा भाव मिले, हम भी मुनि बन के और भगवान बन सके। ये सब पुण्य की वजह से होता है, भगवान कोई भी डिसाइड नहीं करता। इस प्रकार से ये आपको प्रसंग पूर्ण हो गया। और
देखिए, सभी भाई बहनों को सुबह बता दिया था, शाम को किसको लेके आना है? कैसे बताओ, किसने अपने घर में खबर दी है? ऐसी सबने दी है। बाकी बीच वालों ने क्या किया? पड़ोसी को बुलवाया है। भैया लोगों के साथ पिताजी आएंगे तो अपने बाजू का पिताजी को बैठवाना है। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम पिताजी की कितनी बात मानते हो, पिताजी आपकी कितनी बात मानते हैं। ठीक, बहनों से हमारा कहना है मम्मी साथ में आएगी, बिल्कुल अपने बाजू में बैठाना है। आप लोग हमेशा क्या कहते हो, जब भी पूछते हैं हमारे मम्मी पापा तो बिल्कुल फ्रेंड के समान है, दोस्त के समान है, कहते हो ना? सही बात है या नहीं है? आज हम देखना चाहते हैं। ठीक, अभी समय है, चाहो तो जाके चाहो तो फोन करके जैसे भी बताओ। अच्छा, आप टेंशन ही होगी कि मम्मी पापा दोनों आएंगे तो कहाँ बैठाएंगे, ये टेंशन। टेंशन निकलना, भैया लोग तो अपने बाजू में पापा को बैठा ही लेना, ठीक है, मम्मी बैठ जाएंगी। और घबराना नहीं, मम्मी पापा को हम इसलिए नहीं बुला रहे कि कोई शिकायत करनी है, मम्मी पापा को हम इसलिए बुला रहे हैं कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझे और आप वास्तव में उठे, क्योंकि